जय धवला, पुस्तक 11वीं, लेक्चर नंबर 4।
ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सौवतानं। अवेदगं वेदगं च संसिद्धं, सिद्धं परमियतिरसा वोच्चं वेदगमहाहियारमं।
यह श्री विरसनाचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पावर्तदास योनि सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा युतिशुब आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 27 पर आ गए। मूल प्रकृति के अनुभाग उदीर्णा का अपना प्रकरण चल रहा है और उसमें अभी हम पदनिक्षेप के प्रकरण में आ गए। ये भुजगार के भी हमने 13 नियुक्त द्वार देखे। हाँ प्रश्न है। हाँ, यहाँ परिणाम का नहीं लेना है, उदीर्णा का लेना है। उत्कृष्ट उदीर्णा का 2 समय लेना है और परिणाम का नहीं लेना है। हाँ, सत्व की अपेक्षा ना। हाँ, सत्व की अपेक्षा। और परंतु उसकी उदीर्णा के बारे में कुछ, सत्ता की अपेक्षा उदीर्णा वैसी ही होती है ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसका थोड़ा प्रस्तावना की जगह देखो, प्रस्तावना का पेज नंबर 9। चौथे लाइन से देखेंगे। वैसे तो अलग अलग प्रकृतियों की, उत्तर प्रकृतियों की उदीर्णा की बात वहां चली थी। आवाज के सारे हाँ, इस प्रकार संज्ञा और उसके अवान्तर वेदों का तथा उच्चारणा के अनुसार उत्कृष्ट आदि अनुयोग द्वारों का निरूपण करने के बाद, चूर्णी सूत्रों द्वारा मिथ्यात्व आदि सभी कर्मों की उत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग उदीर्णा के स्वामित्व का विचार करते समय एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की गई है। बात यह है कि मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का स्वामी ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को बतलाया है जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है और उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला है। अब प्रश्न यह है कि उक्त जीव के यह उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के ही होती है या अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के भी हो सकती है। हमें प्रश्न पड़ेगा, अनुत्कृष्ट वाले को कैसे होगा? यदि मात्र उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के ही मानी जाती है तो जो जीव स्थावर कायिकों में से आकर त्रसों में उत्पन्न हुआ है उसके तो प्रारंभ में उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का सद्भाव बनेगा ही नहीं, यानी वहाँ वो तो कम सद्भाव के साथ आया है। उसके तो मात्र अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म ही होता है क्योंकि वह द्विस्थानीय है और अनुभाग में भी हत समुत्पित और हत समुत्पत्ति होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय होकर जो ही सत्कर्म की उदीर्णा करता है तब उसके चतुस्थानी अनुत्कृष्ट अनुभाग का ही बंध होता है। अब यदि इस चतुस्थानी अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक के उत्कृष्ट संकलेश परिणाम नहीं माने जाते हैं तो वह कभी भी उत्कृष्ट अनुभाग के बंध के योग्य नहीं हो सकता।
क्या कहना चाहते हैं? एक इंद्रिय में से आया है, सत्ता में तो उत्कृष्ट अनुभाग है ही नहीं है, और सत्ता में नहीं और उत्कृष्ट उदीर्णा यानी उदय नहीं मानेंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको उत्कृष्ट संकलेश भी नहीं हो सकता, यानी उसको उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ, वैसे उदय के अनुसार परिणाम, परिणाम के अनुसार नया बंध। अब एक इंद्रिय में से आया है, सत्ता में अनुभव कम है, तो उत्कृष्ट कैसे बांधेगा, ये प्रश्न है यहाँ।
और जब उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणामों के अभाव में उत्कृष्ट अनुभव का बंध ही नहीं करेगा तो वह उसके अभाव में उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणामों का अविनाभावी उत्कृष्ट अनुभव का उदीरक कैसे हो सकता है, अर्थात त्रिकाल में नहीं हो सकेगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो संगी पंचेंद्रिय चतुस्थानीय अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है उसके भी उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणाम हो सकते हैं, जबकि उसके उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणाम हो सकते हैं तो वह जहाँ उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कर सकता है वहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म से भी उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा कर सकता है, यानी उत्कृष्ट संकलेश है, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध हो रहा है और सत्ता में अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म में से भी उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा कर सकता है। हाँ, तो उसका उत्कृष्ट बनेगा उत्कृष्ट संकलेश के कारण, अभी इस तरह से हाँ बढ़कर उदय में आया,
क्योंकि एकदम क्लियर नहीं होता है।
हाँ, नहीं क्लियरिटी अभी, अभी किस फॉर्म में उसकी उदीर्णा हो रही है, किस रूप में उसका उदय हो रहा है, उसकी बात चल रही है, यानी यहाँ परिणामों के अनुसार अनुत्कृष्ट का भी उत्कृष्ट होता है ये बात कह रहे हैं। इतना अवश्य है कि यह अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा के योग्य होना चाहिए, एकदम वो द्विस्थानीय में से एकदम उत्कृष्ट नहीं होगा, उसके यथा योग्य उतना उसको अनुत्कृष्ट होना चाहिए कि जहाँ से वो उत्कृष्ट रूप परिणामित होकर उदय में आवे। इसका अर्थ ही मुझे ऐसा लगता है कि किस रूप में उदय में आता है ये बात चल रही है, यानी उत्कृष्ट में से आता है ऐसा नहीं, किस रूप उसके उदय उदीर्णा किस रूप में चल रही है उसकी बात है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो बंद होने के बाद वो से नहीं, वो बात नहीं है, सत्ता में जो अनुत्कृष्ट पड़े हैं और जो उत्कृष्ट रूप से परिणमित हो सकते हैं परिणाम के कारण, जैसे हम क्या देखते हैं, अभी हम उल्टा सोचते हैं, जब जीव के समय की प्राप्ति के पूर्व की बात करेंगे तो उसके तत्व विचार के काल में जो सत्ता में अनुभाग पड़ा है वो अत्यंत मंद होकर उदय में आ रहा है। अभी सत्ता में कितना पड़ा है उससे नहीं, उदीर्णा ने क्या किस रूप में उदय में आ रहा है, ख्याल में ना, सत्ता में भले वो अधिक पड़ा हो, अभी उदीर्णा ने उदय रूप आना तो हमने देखा था अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन होकर उदय में आता है, तो उसकी उदीर्णा किस रूप में चल रही है, इस तरह से लेना उसकी। हाँ, यहाँ करण परिणाम में अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहा है,
तो उसके अपोजिट संकलेश उत्कृष्ट संकलेश वाला परिणाम
परिणाम के
हाँ। उसकी सत्ता में भी अनुत्कृष्ट वाला पड़ा है
हाँ, तो अनुत्कृष्ट हाँ,
तो भी वो उत्कृष्ट होकर
उदय में आएगा, उसी को उत्कृष्ट उदीर्णा करी। अभी स्थिति में तो हम ऐसा नहीं कहते ना,
स्थिति
में से आया है उसको हम उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कहेगी, यहाँ उदय में आते हुए उसका अनुभव किस रूप में उदय आ रहा है उसकी बात यहाँ चलेगी।
तो तो सत्ता में पड़ा है उसके साथ जीव का कोई संबंध नहीं है,
बिल्कुल संबंध नहीं है समय की, क्योंकि बंधा है तो हमने देखा बंध तो अंतर्मूर्त में चलेगा एक तरीके का स्थिति का बंध। अब यहाँ तो अनुभव की चर्चा चल रही है, कल जो अपने विषय चल रहे थे ना कि वैसा का वैसा परिणाम है, वैसा का वैसा है फिर भी किस रूप में उदय में आ रहा है उसके लिए दो समय की लिमिटेशन। अनुत्कृष्ट कुछ भी हो सकता है, जो उत्कृष्ट नहीं वो सब अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट में चतुर्थानी तीन स्थानीय जो यथा योग्य जहाँ जो है, क्योंकि हाँ उस समय चतुर्थानी वाला होगा। अभी बात की नहीं केंद्रीय में से आया है, द्वि स्थान लेके आया है और फिर चतुर्थानी बंद हो रहा है अनुत्कृष्ट है फिर, और वहां से चलकर वो उत्कृष्ट चतुस्थानी हो सकता है। और भी आगे 9 नंबर का पेज, जबकि उसके प्रस्तावना का, जबकि उसके उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणाम हो सकते हैं तो वह जहां उत्कृष्ट अनुभाग का बंद कर सकता है वहां अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म से भी उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा कर सकता है। इतना अवश्य है यह अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा के योग्य होना चाहिए,
हो सकता है
यानी उससे वो बढ़कर उदय में आ सकता है, एकदम मिनिमम से एकदम मैक्सिमम तो नहीं हो सकता। अनुत्कृष्ट है परंतु ऐसा अनुत्कृष्ट है कि जहां से वो उत्कृष्ट में टर्न हो सके। समग्र कथन का तात्पर्य कि जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला या तत्प्रायोग्य अनुत्कृष्ट, तत्प्रायोग्य शब्द डाला, अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम से युक्त संगी मिथ्या दृष्टि जीव है, वह मिथ्या तो की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का स्वामी है। वो अनुभाग किस रूप में उदय में दे रहा है, आ रहा है उत्कृष्ट रूप से। इसी प्रकार यथा योग्य सब प्रकृतियों के भी उत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग सत्कर्म के स्वामी का विचार चुन्नी सूत्रों के अनुसार कर लेना चाहिए, यानी परिणाम विशेष के कारण यह परिणाम प्रत्यय कहा था ना उसको, जिसके कौन से परिणामों से अनुभाग में मोहनी के अनुभाग में फर्क पड़ेगा, मिथ्यात्व है अविरति है कषाय है प्रमाद है,
नहीं तो मिथ्यात्व से ही होगा ना,
अकेला मिथ्यात्व नहीं अन्य भी समय दृष्टि
नहीं अन्य
है
पर मिथ्यात्व तो होना ही चाहिए तो ही उसको अनुभाग वाला होगा।
मिथ्यात्व कर्म के लिए मिथ्यात्व का अनुभव, अन्य कर्मों के लिए यथायोग्य उसका अपना अनुभव, ऑफकोर्स मिथ्या दृष्टि के ही सभी प्रकृतियों का भी यानी
उत्कृष्ट
होगा। शुभ कर्म ने अन्य नहीं मोहनीय की बात चली, मात्र मोहनीय की आचरती में उल्टा लेना पड़ेगा ना, हाँ फिर भी वो शुभ तो नहीं कहेंगे, यथा योग्य जो तीव्र संकलेश से जो बनती है ऐसी जो है तीव्र अशुभ जिसको कह सकते हैं और मंद अशुभ। जब हम उत्तर प्रकृतियों की देखें तो और क्लैरिटी होगी इसकी,
थोड़ी होनी चाहिए।
हाँ तो इस प्रकार यथायोग्य सब प्रकृतियों के भी उत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग सत्कर्म के स्वामी का विचार चुन्नी सूत्रों के अनुसार कर लेना चाहिए। अब यहाँ तो हो गया अपना
आना,
इन्हें लगातार उतने उत्कृष्ट उदीर्णा कितने समय तक हो सकती है, तो दो समय तक। अभी तो बताया ना सब जगह दो समय की बात उन्होंने बताई है, भले परिणाम ऐसा चले तो फिर भी उसकी उत्कृष्ट रूप से उदीर्णा कब से कब तक चलेगी, तो दो समय तक। यहाँ सत्व से लेना ही नहीं कुछ, जो हमने अनुभाग विभक्ति में तो हम सत्ता की बात करते थे और यहाँ तो किस रूप में उदय हो यानी उदीर्णा होकर वो उदय किस रूप में हो रहा है उसकी बात है। यहाँ स्थिति उदीर्णा में भी क्या हमने देखा, कौन सी स्थिति में से आकर वो उदय रहे, अब यहाँ ऐसा लेना कौन सा स्पर्धक वो वर्तमान में आकर यानी अभी वर्तमान में उदय रूप हो रहा है, आकर कह सकते हैं हम उसको क्योंकि परमाणु ऊपर से आए हैं तो उसके किस रूप में उसकी उदीर्णा होकर उसका उदय चल रहा है अनुभाग का।
यहाँ पे उदीर्णा उत्कृष्ट होगी तो ऊपर जो निषेक पड़े वहाँ पे जो अनुभाग में जो
पृथ्वी पतन होती है वहाँ पे भी अनुभाग का पलटना होगा।
सत्ता में अनुभाग का होता है ना, अनुभाग संक्रमण हमने देखा था।
हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ,
सत्ता में पड़े पड़े अनुभाग का
अनुभाग होता जाएगा
तो संक्रमण कहेंगे
उसको, संक्रमण।
यहाँ उदीर्ण है ना, उदय रूप की बात चल रही है।
तो इतने संक्लेश वाले परिणाम दो समय के लिए हो सकते हैं, इसे यहाँ पे कहना है। हाँ
वही तो, ये अनुभाग के योग्य जो परिणाम है उदीर्णा के लिए दो समय की बात। अब उसका बंद कितने समय होता है उसकी बात यहाँ नहीं है। प्रश्न अपना क्या था, अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट परिणाम होता है, बंद होता है, स्थिति भी उत्कृष्ट बनती है इतने तक। तो यहाँ तो क्या कहते हैं कि अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान में ऐसा कोई रूल नहीं है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट उसमें होगी। हाँ
यहाँ पे उत्कृष्ट सुदीड़ा लेते हैं तो जो नीचे जो डिफरेंस है उसको कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, जो उत्कृष्ट रूप से उदीड़ा हो रही है उसको
किस रूप से आ रहा है,
पर डिफरेंस लेना है जो पहले कम था और पीछे उत्कृष्ट हो गया उदीर्ण होकर, ऐसे ले सकते हैं क्योंकि पीछे क्या हो जाए उसका अनुभव बढ़ गया।
वो तो वृद्धि वगैरह में ले लेंगे, भुजगार में ले लेंगे, किस रूप में था और किस रूप में हो रहा है, बढ़ने को तो भुजगार कहेंगे।
हाँ।
यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ उत्कृष्ट है कि नहीं, उत्कृष्ट क्या अर्थ क्या है, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम जितना उत्कृष्ट अनुभव हो सकता है उसका उदय हो, उसकी बात यहाँ चल रही है। जब हम 27 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, यहाँ से आज पद निक्षेप का प्रकरण शुरू होगा, कल हमने भुजगार के देखे थे। पद निक्षेप में तो इतनी बात बताए ना, उत्कृष्ट वृद्धि होती है, हानि होती है, जगन्य होती है, हानि होती है, वृद्धि होती है वगैरह। उसमें ये तीन अनुयोग द्वार है, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। समुत्कीर्तना दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मोहिनी की उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान अनुभाग के उदीरक जीव है, बस होते ही इतने ही बता दें। उत्कृष्ट वृद्धि वाले, उत्कृष्ट हानि वाले और अवस्थान वाले, इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। हाँ इसी प्रकार जघन्य को भी जान लेना चाहिए, यानी जघन्य वृद्धि भी है, जघन्य हानि भी है, जघन्य अवस्थान भी है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तब जानना चाहिए। अब स्वामित्व बताएंगे, ये उत्कृष्ट वृद्धि है तो बता दी, उसका स्वामी कौन है। तो स्वामित्वानुगम भी दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मोहिनी की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट अनुभाग के सत्कर्म वाला जो जीव उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ, उसके बाद उसने उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा की, मात्र सत्ता में है ऐसी बात नहीं थी, वो तो अनुभाग सत्कर्म में चला जाएगा, अनुभाग विभक्ति में। तो उसने उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा की, ऐसा जो उत्कृष्ट बुद्धि का स्वामी है। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है,
क्या उत्कृष्ट वृद्धि बताई तो जो जगदीय वृद्धि से कर रहा, अरे मिनिमम से कर रहा था और एकदम उत्कृष्ट हो गई, वो लेना है, डिफरेंस लेना है कि नहीं।
हाँ वहाँ तो उत्कृष्ट वृद्धि भुजगार जैसे कहेंगे, हाँ। जहाँ भुजगार रहते वहाँ वृद्धि की
कम अनुभाग वाला था और एकदम बढ़कर
कम अनुभाग वाला है ना, उदीर्णा किस रूप में हो रही थी,
हाँ।
उदीर्णा कम अनुभाग रूप से हो रही थी, अब उत्कृष्ट रूप से होने लगी। देखो उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर देव मरा, एकेंद्रीय हो गया, तदनंतर समय में, प्रथम समय में उदीर्ण करने वाला वह जी उत्कृष्ट हानि का स्वामी है। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। आपका प्रश्न है वहां तो बढ़ना चाहिए अनुभव, अब उसके योग्य वहां उदय होगा क्योंकि वहां उसकी संकलेश विशुद्धि दोनों ही वैसे मंद है ना। तीव्र संकलेश जैसे संगी पंचेंद्रियों के होते हैं वैसे एकेंद्रियों के नहीं होंगे, उसकी अपनी यथा योग्य हो गए परिणाम वहां पर। तो कहते कि अभी वो एकेंद्रीय होने के बाद प्रथम ही समय में जो उसकी उदीर्णा चलेगी अनुभव की तो वहां उत्कृष्ट हानि हो जाएगी। देव में जितने कर रहा था अब एकेंद्रीय में जाने वाला देव है तो कितना संकलेश वाला होगा, मरण के समय में उसके कैसे संकलेश परिणाम होंगे। अभी वो संगी से यहाँ एकेंद्रीय में आ गया, उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने लगा वह तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। अभी हमने ये देखा देव है केंद्र में आया है, प्रथम समय में उत्कृष्ट हानि हुई, दूसरे समय में उतना ही रहा तो उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। नहीं वो तो मार्गणा में चला जाएगा, यहाँ तो पहले बात किसी चल रही है, अभी आदेश है अभी बता देख रहे, आदेश से बात अलग होती है। अब हम देखेंगे नारकियों में, आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट वृद्धि का भंग ओग के समान है।
क्या अगेन देव बताया तो देव ही जो एक उसकी उत्कृष्ट हानि होगी क्योंकि वो देख समय में एकेंद्रीय में जा सकता है।
हाँ, हमें मालूम है कि मनुष्य और तिरियन चाहे अंतर्मूर्त पहले तो जा नहीं सकते उत्कृष्ट संकलेश में मर कर, देव जा सकता है एकेंद्रीय में, उसकी बात नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी नारकी की बात, तो उत्कृष्ट वृद्धि का भंग ओग के समान है। ओग में क्या लिखा था, जो ऑलरेडी उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता है सप्तम वाला और उसके उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ, उसके बाद उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा की होती ही ऐसा नहीं कहा, उसने उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा की। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है, वहां तो ओग में तो देव में से एक इंद्रिय में भेजा था, अभी नरक में रहते हुए की बात चल रही है। तो उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर नारकी तत्प्रायोग्य विशुद्धि से प्रतिभग्न हुआ वो उत्कृष्ट हानि का स्वामी है, यानी वो विशुद्धि शुरू हो गई तत्प्रायोग्य, उसके यथायोग्य जितनी विशुद्धि हो सकती है तो वहाँ उसकी उत्कृष्ट हानि होगी। उत्कृष्ट की उदीर्णा कर रहा था और उसके यथायोग्य वहाँ विशुद्धि प्राप्त हुई,
विशुद्धि से प्रतिभग्न हुआ,
प्रतिभग्न हुआ किस में से, संकलेश में से प्रतिभग्न हुआ,
विशुद्धि से प्रतिभग्न हुआ संकलेश से,
संकलेश टूट गए उसके। जघन हानि कब होगी, जब जघन्य उदीर्णा करने लगेगा, जघन्य कहो या जघन्य अब नहीं होगी उसकी, परंतु जो उत्कृष्ट थी अभी उसमें ड्रॉप हो गया। हम प्रायोगिक लब्धि पे क्या कहते थे, एक झटके में स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होता है बड़े से बड़ा, उस रूप में ले लो या पहले संकलेश वाला था उत्कृष्ट उदीर्णा कर रहा था और तत्प्रायोगिक उसकी विशुद्धि हुई तो क्या होगा,
कम हो जाएगा
अभी किस रूप में उदय, भले सत्ता में पड़ा है उसकी बात नहीं, अभी किस रूप में उदय में आएगा तो कम होकर उदीर्ण शुरू होगी उसकी अनुभाग उदय
विशुद्धि के बाद कोमा डाल देना चाहिए तो कुछ गड़बड़ नहीं है।
विशुद्धि से प्रतिभग्न हुआ है ने वो तो संकलेश में से
कोमा डाल देना,
संकलेश टूट गया उसका,
ये विशुद्धि से प्रतिभग्न हुआ ऐसा प्रतीत होता है।
नहीं नहीं पहले संकलेश परिणामी था, हाँ अभी हम समझने के लिए प्रायोगिक लब्धि में उसके यथायोग्य जितनी विशुद्धि होगी, अभी यथायोग्य विशुद्धि डायरेक्ट प्रायोगिक लब्धि में तो नहीं जाएगा, विशुद्धि लब्धि भी होगी यहाँ पर।
विशुद्धि से प्रतिपक्ष नहीं हुआ ऐसा मेरा कहना है, संकलेश से प्रतिपत्ति हुआ,
विशुद्धि से ने विशुद्धि के कारण।
हाँ कोमा डाल दी तो इसीलिए मैंने कोमा डालने के लिए।
ऊपर तब पाव विशो ही है पड़ी भगो 28 पेज पर है हम। हाँ है ना, यानी संकलेश टूट गया।
हाँ वो संकलेश से प्रतिबद्ध।
हाँ संकलेश, संकलेश से यानी संकलेश में से, और विशुद्धि से यानी विशुद्धि के कारण से। हाँ उसकी विशुद्धि हुई। देखो जब पंच लब्धि में तो प्राय की लब्धि तो आगे आती है, सौक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि एक साथ होती है, क्योंकि नहीं वहाँ कांडक नहीं होता है, परंतु वहाँ उदीरणा में कटौती होगी। अनुवाक का बड़ा कांडक प्राय की लब्धि में होगा, परंतु ये संकलेश परिणाम में उसको विशुद्धि लब्धि नहीं कहेंगे, तो तत्प्राय की विशुद्धि हुई उसकी, भले वो लब्धि के प्रकरण में मतलब साधारण ऑर्डिनरी भी कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसके विशुद्धि परिणाम ऐसे हुए कि वह अनुभाग की हानि हो गई, यानी जिस फॉर्म में उसका अनुभाग का उदय चल रहा था अब हीन अनुभाग रूप से उन्हें उदय होने लगा। सूक्ष्म लब्धि की परिभाषा क्या देखी थी? नहीं नहीं नहीं, सूक्ष्म की हुई नहीं, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्मों का अनुभव जिस काल में अनंत गुना हीन होकर प्रति समय हीन होकर उदय में आने लगे, तो अनंत गुना हीन होकर उदय में आने लगे का अर्थ क्या है? उदीर्ण होने लगी ना अनुभव, उदीर्ण होने लगी। अनंत गुना हीन होकर उदय में आना का अर्थ क्या है? अनुभव उदीर्ण, उसकी हानि हो गई, तो तत् प्राय भी विशुद्ध हुआ। ये बात कही
तो विशुद्धि और सौक्षम दोनों एक ही है।
हाँ एक ही, एक काल में, क्योंकि जिसको हम कहेंगे ज्ञानावरणादि का वो तो उस सौक्षम की भाषा में कहा, और उसी काल में क्या हो रहा है, मोहिनी का भी अनुभाग मंद होकर उदय में आ रहा है, तो मंद होकर उदय में आ रहे उसका फल क्या है या किस कारण उदय में आ रहे, दोनों तरफ से ले सकते। मंद उदय चल रहा है उसके जीव के परिणाम मंद चल रहे, या उसके जीव के परिणाम मंद हो रहे तो यहाँ अनुभव मंद होकर उदय में आ रहा है, उसको परस्पर निमित्त देख सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ वैसे जब देशना मिली होती है ऑलरेडी तब सभी साथ में होती है, प्रायोगिक लब्धि तक चारों लब्धि एक साथ चलती है। अभी उसको शुरू से बताने के लिए क्रम पड़ेगा, या जो शुरू में जिसको अभी देशना नहीं मिली है उसके लिए पहले सौक्षम विशुद्धि कहेंगे और बाद में देशना कहेंगे,
तो चारों शुरुआत एक साथ होती है।
जिसके ऑलरेडी देशना मिली है
उसको एक साथ ही,
अभी उसके देशना मिली है उसने और उसके वो मन में ही चल रहा है उसके कि तत्व विचार चलता है, तो तत्व विचार के काल में चारों लब्धि एक साथ है उसके, और उसमें और गहनता से वो डूब जाता है उसी में, आत्मा की अनुभूति होती है। नहीं अब करणानियोग में करण परिणाम होते हैं, चारों साथ में एक साथ होती है चारों, और सबका मिलकर भी काल अंतर्मूर्त है। ये जब पंचलब्धि पुस्तक लिखी ना तो बहुत बातों का खुलासा हुआ, नहीं तो ऐसे मानते थे ना कि बस हमें सौक्षम विशुद्धि लब्धि तो है, सौक्षम संगी पंचेंद्रिय, सौक्षम लब्धि है हमको, और अभी हम मंद परिणामी है तो विशुद्धि है, देशना हमें मिल गई है तो हमारी ये सब चल रही है। आगे ये हानि किसके होगी? जो उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा कर रहा है, उदीर्णा ने उस फॉर्म में उसका उदय चल रहा, उत्कृष्ट अनुभाग में से उसका उदय चल रहा था। अब वो विशुद्धि के कारण क्या हुआ, प्रतिभग्न हुआ, संकलेश छूट गए उसके और उसके हानि हुई, यानी अभी उसका अनुभाग कम होकर उदय में आने लगा, अनुत्कृष्ट हुआ।
जो हमने लिया है, जो देव मरकर एक दिन में गया और उसको हानि हो गई, उसकी अपेक्षा यहाँ पे कम हानि होनी चाहिए।
हाँ, क्योंकि यहाँ तो वो नारकी के योग्य होगा, वहाँ तो एक इंद्रिय में गया है। इसलिए ओग में उसको लिया, ओग में कोई अपेक्षा नहीं थी किसी गति वगैरह की, तथा वही वही यानी वही जीव तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अपनी गति में रहते हुए की बात है ना। उत्कृष्ट उदीर्ण कर रहा था, फिर उसमें से विशुद्ध परिणाम हुआ, तो उसकी उत्कृष्ट हानि हुई। इतनी विशेषता है, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त और आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में तत्प्रायोग्य संकलेश कहना चाहिए।
किधर नहीं होगी
क्या?
नहीं, क्योंकि अच्छे
हाँ क्योंकि वो उस पर्याय में है ना। यहाँ ओग में दो पर्याय अलग ही है, वहाँ मार्गणा में हम एक ही किसी पर्याय की बात करेंगे, तो एकेंद्री की बात करने तो उसके आने के बाद तो उसके तो द्विस्थानीय जो हो रहा था उसके यथा योग्य हानि हो जाएगी उसकी अपनी। तत्प्राय जो संकलेश क्यों कहा क्या
विशुद्धि से कहना
चाहिए, तत्प्राय जो विशुद्धि से प्रतिभग्न हुआ। इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में तत्प्राय जो संकलेश कहना चाहिए। यानी यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्ण करने वाले की हानि हुई,
वहाँ पे जो उत्कृष्ट संकलेश
होता है वहाँ उसके अपने योग्य संकलेश से उसकी हानि
होगी।
इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जाना चाहिए। ये मिला ना आपको? देखो देखो, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, नीचे से तीसरी लाइन, मनुष्य अपर्याप्त और आनंद कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में तत्प्रायोगिक संकलेश कहना चाहिए। यानी वहाँ ऊपर क्या देखा था, उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्ण कर रहा था और उससे प्रतिबंधन हुआ उसको, अब यहाँ उसके तत्प्रायोगिक संकलेश
वहाँ पे यथा योग्य
उसके युद्ध के उसमें से वो कम हो गए। अब जघन्य का प्रकरण देखेंगे, ये अपना पद निक्षेप का प्रकरण चल रहे हैं, उसमें जघन्य देख रहे हैं। यानी अभी यहाँ जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि की बात करेंगे। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मोहनी की जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है? उपशम श्रेणी से उतरने वाला जो अन्यतर जीव द्वितीय समय में उदीरक है। लक्ष्मी पहले समय में क्यों नहीं लिया? वहाँ तो अवक्तव्य कहेंगे, वहाँ तो शुरू हुआ वृद्धि के लिए, उसको कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना पहले समय में, इसलिए उसको द्वितीय समय का। वह जघन्य वृद्धि का स्वामी है। जघन्य हानि का स्वामी कौन है? जो अन्यतर क्षपक एक समय अधिक एक आवली काल के शेष रहने पर सकषाय भाव से स्थित है, वह जघन्य हानि का स्वामी है। क्योंकि उसके पूर्व समय के कंपैरिजन में वहाँ पर उसकी जघन्य हानि हुई है,
तो यहाँ जघन्य हानि में भी अनंत गुणाहीन होता है, क्योंकि हमने देखा था कि सूक्ष्म सृष्टि रूप जब उदय होता है तो अनंत का अनुभव
बराबर है। फिर भी वो जघन्य होगी। जघन्य अवस्थान का स्वामी कौन है? जो अन्यतर अधप प्रवृत्त संयत जीव अनंत वे भाग वृद्धि करके अवस्थित है।
ये अधप प्रवृत्त कौन सा नियत है?
अधकरण, अधक अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण वाला अधप प्रवृत्त संयत जीव।
तो वहां पे इसे अवस्थित वाला जीव
प्रवृत्त संयत जीव, अध प्रवृत्त संयत नहीं, इसको नहीं लेना, अध प्रवृत्त संयत जीव, अध प्रवृत्त अलग है, अध प्रवृत्त करण अलग बात है। हाँ, सातवां जो छठे में आने वाला है वो लेना, छठे में आने वाला अवस्थित की बात चल रही है, सातवें में ही स्थित है वो। अध प्रवृत्त संयत जीव प्रवृत्त संयत का अर्थ क्या लेना, इसमें मिलेगा ना सिद्धांत कोश में, इंडेक्स में मिलेगा, पांचवा भाग है ना इंडेक्स वाला, संयत के प्रकरण में मिलेगा अध प्रवृत्त संयत, क्योंकि उसका एग्जैक्ट अर्थ, क्योंकि वृद्धि करने वाला है ना।
हाँ। नहीं, ये तो अवस्थान की बात है ना यहाँ पे, तो
अवस्थान परंतु वृद्धि कब करेगा, वृद्धि करके अवस्थित हो गया है, जगन में वृद्धि करके अवस्थित हो गया
है। हानि के पश्चात वाली बात है ना, जगन ने हानि की और पीछे अवस्था हो गया,
अधकरण, अधकर्म, अधप्रवृत्त, अप्रमत्त, चार पूर्णांक 31, चौथा भाग 130 पान, ओ पहला कॉलम, अधप्रवृत्त संयत गुणश्रेणी निर्जरा अल्पभूत्व 1.174, एक चौथा आणि एक पहिल्या ह्याच्यामध्ये अधप्रवृत्त संयत 1.174 पान, 130, ओ ओ प्रमत्त संयत का सामान्य अधापवत्तो संपमत्तो यो, यहाँ लब्धिसार मूल में स्थान संहिता अधप्रवृत्त संहिता, अधप्रवृत्त स्थान संहिता अर्थात अप्रमत्त व प्रमत्त संयत की, यानी वो उसकी अल्पभूत बता रहे, सब सर्वथा स्तोक असंख्यात गुण, अधप्रवृत्त संस्थान संयत यानी प्रमत्त प्रमत्त वाला है। हाँ, अधप्रवृत्त संस्थान संयत कहा उसको, इथे ये दुसरा एक म्हटलेलं आहे, उपशम चारित्र के सन्मुख वेदक समय दृष्टि जी अप्रमत्त गुणस्थान में अनंतानुबंधिका विसर्जन करके अंतर्मूर्त काल पर्यंत अधप्रवृत्त अप्रमत्त कहलाता है, स्टेडी रहे ना वो, ये बात है। उपशम चारित्र के सन्मुख वेदक समय दृष्टि जीव,
उपशम चारित्र के सन्मुख तो
द्वितीयोपशम करने वाला हो नहीं गया, अनंतानुबंधी की विसर्जना की है उसने। हरेक के बाद अंतर्मूर्त तक विराम रहता है वहां पर। उपशम चारित्र के सम्मुख,
उपशम चारित्र बताया तो वहां पे
सम्मुख सम्मुख हुआ है, सातिशय नहीं हुआ है।
हाँ, पूर्वकरण के पहले तो उससे द्वितीय उपशम कर दिया है, इससे लेना है।
अभी अनंतानुबंधी की विसर्जना की है बस। वेदक समय दृष्टि का अर्थ क्या है? द्वितीय उपशम है या नहीं हुआ है?
नहीं हुआ।
पहला पूरा सुनो, पहले पूरी परिभाषा सुनो। उपशम चारित्र के चारित्र के सम्मुख वेदक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि अप्रमत्त गुणस्थान में अनंतानुबंधी का विसंयोजन करते। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके अंतर्मूर्त काल पर्यंत अधप्रवृत्त अप्रमत्त कहलाता है। अप्रमत्त कहलाता है, यह अधप्रवृत्त अप्रमत्त की बात है। आदि अब ऊपर अधप्रवृत्त प्रमत्त की बात ऊपर के पैराग्राफ में बताते हैं। उपशमचर्या वेद सम्मोहण विजयता अंतमूर्त काल अधापवत्तो पमत्तो यो। या उसका लब्धि सार 220-273 सार गुमर सार जीवकांड में भी बताया है 45-97-8। यानी स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त ऐसे दो भेद हैं। स्वस्थान अप्रमत्त संयत का स्वरूप कहते हैं और लब्धि सार में यहाँ ये बात बताई है। हे 130 पाने हाँ सौ वाला चौथा और यहाँ क्या देखा था हमने उसकी गुणश अधा प्रवृत्त संयत प्रमत्त अप्रमत्त दोनों लिखा था जो गुण श्रेणी निर्जरा में उन्होंने बताया था। अब उस काल में उसके प्रमत्त भी होता होगा ना, केवल अनंत अनुबंधी की विसंयोजना की है कि नहीं का? पहले भाग में जो हमने देखा था वो तो जगन्य गुण श्रेणी निर्जरा की बात की, वहां सबसे तो गुण श्रेणी निर्जरा किसकी होती है वहां वो लिया। बताना यहाँ क्या हमने जघन्य के प्रकरण में देखा? अनंत वे भाग वृद्धि करके अवस्थित है, प्रवृत्त प्रमत्त भी होता होगा और अप्रमत्त भी होता होगा। हाँ मैंने बताया ना उसमें तो अल्पस्तो का उदीर्णा कहाँ होती उसकी बात, ये जघन्य अनुभाग कहाँ किसके होता है उसकी बात है, परंतु ये अनुभाग उदीर्णा की बात चल रही है अपनी, अवस्थित अनुभाग की चाहिए। ये महाबंध की बात है, यहाँ पर महाबंध है ना आपके पास?
बोलना आपके पास अभी लक्ष्मी बोलेगी अश्विन भाई देख के सभी के लिए होमवर्क है ना, होमवर्क मीन्स वर्क। I'll send you one full set to date set. अभी मैं 10:30 बजे देख के जाता हूँ।
देखो हम यहाँ देखते हैं आगे। मैंने जो है उससे थोड़ी वृद्धि हुई वो जघन्य वृद्धि है और उतनी की उतनी उसकी उदीर्णा हो रही है।
ये साथ ही सही अप्रमत्त दशा में वृद्धि होगी हानि होगी?
अभी उसने अनंतानुबंधी का विसंयोजना करके स्थित है, इतना ही लिया,
वहाँ पे वृद्धि हो सकती है क्योंकि कारण परिणाम में एंटर होने जा रहा है, उसकी तो हानि होगी, उसकी वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि की अपेक्षा छठा गुण स्थान ले सकते हैं, हानि की अपेक्षा साथी से अप्रमत्त से ऊपर जाने वाले भी ले सकते।
अभी तो उसने द्वितीयोक्षम नहीं किया, बस अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके स्थित है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके स्थित है, इतना ही लिया। इच्छा से थोड़ी होती है, हम इच्छा करेंगे अभी मोक्ष जी तो क्या हो जाएगा।
ये सातवें गुणस्थान में भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं, इससे वृद्धि हो जाती है।
अनंत वा भाग वृद्धि करके अवस्थित है, बहुत जगह ने अब जैसे है ना
छठे में आएगा तो बराबर, पर सातवें गुणस्तर में जो
अभी उसमें भी थोड़ी मिनिमम पॉसिबल जो है और वहाँ स्टेडी परिणाम होते होंगे और अनुभाग थोड़ा बढ़कर उसमें उदय में आवे। या अभी ये मालूम नहीं कि सातवें से छठे लेना है कि नहीं लेना उस अवस्था में। अनंतानुबंधी की विसंजना करने के बाद भी छठा सातवां चलेगा ना कुछ काल तक, क्या वो डायरेक्ट सातवें में से ही वो आगे चलेगा? ये बात क्लियर नहीं है अभी। हाँ श्रेणी अभी चढ़ी नहीं उसने, उसके पूर्व की अवस्था है और यहाँ मूल प्रकृतियों की बात चल रही है, वहाँ जो बन रहे हैं अन्य प्रकृतियाँ उसकी बात लेना है वहाँ पर, और वहाँ जिसका उदय नहीं उसकी बात तो है
उसके संज्वलन और पुरुष हाँ। की बात होगी
नहीं सातिशय नहीं हुआ है, सातिशय नहीं कहेंगे इसको, वो द्वितीय अक्षम होने के बाद उसको सातिशय कहेंगे। साथी से में तो उसका अधकरण शुरू हो गया है, अधक प्रवृत्ति की बात नहीं, अधकरण जो करण परिणाम है उसका श्रेणी चढ़ने के पूर्व वाला वो शुरू हो गया है। एकांत अनुवृद्धि तो सातवें में आने पर होती है, सातवें में आते ही शुरुआत में एकांत अनुवृद्धि का स्थान होता है, जैसे किसी नीचे के गुणस्थान से ऊपर में आता है, जैसे कोई पांचवें में पहले में पहले आया तो वहां भी शुरू में एकांत अनुवृद्धि के स्थान। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे हम। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, यानी मनुष्यों में ये पॉसिबल है। अब आदेश से कहाँ होती है उसकी बात करेंगे। आदेश से नारकियों में मोहिनी की जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है, जो अन्यतर सम्यक दृष्टि नारके। अभी कम से कम वृद्धि करनी है,
पीछे युद्ध ना करवा के पीछे वृद्धि
करवा। तत्प्राय के अनंत वे भाग रूप से वृद्धि करता है, वह जघन्य वृद्धि का स्वामी है, उतनी ही हानि करता है, वह जघन्य हानि का स्वामी है। तथा इनमें से किसी एक जगह अवस्थान होने पर जघन्य अवस्थान का स्वामी है। इसी प्रकार सब नारकी अब सब देवों में जानना चाहिए। अवस्थान
मतलब क्या हुआ?
उतना का उतना
नहीं,
वृद्धि करके उतना ही रहा दूसरे समय में, वृद्धि के बाद अवस्थान हुआ या हानि के बाद अवस्थान हुआ।
तो यहाँ पे उदीर्णा के हानि हो रही है, तो दो समय के लिए वो ही वृद्धि लेना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अवस्थान वहाँ पे उदीर्णा की अपेक्षा हो रहा है।
वृद्धि हुई,
हाँ, एक बार हानि हो गई तो अवस्थान कभी होगा कि दूसरी बार?
दूसरे समय में।
हाँ, तो वृद्धि एक बार हानि हो गई तो वो ही हानि होगी इसे लेना?
नहीं, हानि हुई ना।
हाँ,
अभी हमारे कुछ लेना नहीं है, 100 से 60 हुआ।
हाँ,
दूसरे समय में भी 60 ही रहा तो उसको अवस्थान कहेंगे।
उदीर्णा की अपेक्षा
तो वृद्धि कहलाएगी,
हानि हो गई।
अवस्थित करते जितना है उतना ही रहना। अरे स्थिति का इसका तो कुछ बस समझ मत जोड़ो। स्थिति लगातार अल्पतर कितने काल तक लंबे काल तक चलती है, और यहाँ तो हमने देखा था किसी का भी भुजगार हो या अल्पतर हो, ये तो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं होता है। कल हमने देखा ना भुजगार अल्पतर के प्रसंग में, कि हमने कल अभी सब नारकी सब देवों में जानना चाहिए। तिर्यंचों में मोहिनी की जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है, जो अन्यतर संयता संयत जीव अनंत वे भाग रूप से वृद्धि करता है, वह जघन्य वृद्धि का स्वामी है, उतनी ही हानि करता है, वह जघन्य हानि का स्वामी है। यानी विशुद्ध जीव लिया है, संहिता संयत वाला लिया। तथा इनमें से किसी एक जगह अवस्थान होने पर जघन्य अवस्थान का स्वामी है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में संहिता संयत हो गया। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मोहिनी की जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है, जो अन्यतर तत्प्रायोग्य अनंत वे भाग रूप से वृद्धि करता है, वह जघन्य वृद्धि का स्वामी है, उतनी ही हानि करता है, वह जघन्य हानि का स्वामी है। तथा इनमें से किसी एक जगह अवस्थान होने पर जघन्य अवस्थान का स्वामी है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब ये पद निक्षेप में अल्प बहुत बताएं। अल्प बहुत्वानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहिनी की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है।
उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक,
यानी वृद्धि का प्रमाण ज्यादा है क्या हानि का ज्यादा है, ये पूछ रहे। उससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है।
उत्कृष्ट वृद्धि से उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है
और उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है। देखो स्वामी तो देखो उत्कृष्ट वृद्धि किसके बताई है,
ना देव से जो इकेंद्र में जाने वाले थे उसको बताई
उत्कृष्ट वृद्धि की बात। उत्कृष्ट अनुभाग का सत्कर्म वाला जीव उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ, उसके बाद उसने उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा की। अवस्थान को विशेष अधिक कैसे कहा, यानी अवस्थान उसको कहते हैं जितनी का उतना रहना उसको अवस्थान कहेंगे। ऊपर की कहाँ लिखा द्वियो न्यू उपकस अवस्थान विशेष आई है। ओग में क्या लिखा देखो, उसके बाद उसने उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा की। ऐसा जी उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है, उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है? ओ उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी कौन है मिला? उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव, तत्प्रायोगिक जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने लगा और तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। अच्छा यहाँ क्या बताना चाहते हैं, यानी वृद्धि के बाद अवस्थान नहीं हो रही है, उत्कृष्ट अवस्थान उसको नहीं कहा, उत्कृष्ट वृद्धि कहा यहाँ पर था वो यहाँ पर हुआ, ये उसकी उत्कृष्ट वृद्धि हुई। उत्कृष्ट उदीर्णा नहीं कह रहे, उत्कृष्ट वृद्धि कह रहे।
पर यहाँ पे हम उदीर्णा की बात कर रहे हैं ना,
उदीर्णा में ही उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ होती है उसकी बात कर रहे, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस कहाँ हुआ है। पूर्ण वो उदीर्णा से पश्चात वाली उदीर्णा कितनी बढ़ी तो इतनी बड़ी, उसके पश्चात अवस्थान नहीं कहा है।
सर यहाँ पे इसलिए सकते हैं कि जो विशुद्धि वाला जीव था जब भी उससे नेक समय में संकलिष्ट परिणाम के एकदम
यथा एकदम नहीं होते,
एकदम नहीं जो भी यथा योग्य है तत्प्राय
तो यथा योग्य अनुत्कृष्ट से उतने यहाँ कर दिए।
हाँ, और उसका जब भी उदीर्णा शुरू हुई कावली के पश्चात तभी उसकी उत्कृष्टि हुई।
आवली के पश्चात कहीं लिखा नहीं है।
नहीं पर उदीर्णा तो आवली के पश्चात ही होगी ना।
देखो देखो ये यहाँ था, यथा योग्य था हम कहेंगे, उससे ये यहाँ तक पहुँचा तो ये उसकी इतनी वृद्धि हुई। ये वृद्धि हुई जहाँ कहीं वृद्धि होती उसमें से ये मैक्सिमम वृद्धि है, ये इसका इतना प्रमाण। अवस्थान कब कहेंगे, यहाँ था कहीं पर भी और वो यहाँ तक आया, इतनी हानि हुई, ये मैक्सिमम हानि नहीं है, ये यथायोग्य हानि है और उसके बाद उतना का उतना रहा तो ये विशेष अधिक हुई ना। इससे मान लेते ये 2 इंच थी तो ये 2.5 इंच हो गई। और उत्कृष्ट हानि कब कहलाएगी, यहाँ पर था और ये इतनी हानि हुई, 3 इंच हुई उसकी। यही यही बात यहाँ बताओ, देखो फिर पढ़े। हाँ शेयर मार्केट को समझाओ।
इंडेक्स 15,000 था।
हाँ 15,000
गिर गया एकदम, 2,000 हो गया। फिर हानि हुई वो
तो स्टेडी रहा।
बड़ा
उत्कृष्ट हानि कब हुई? तो जब 15 से एकदम 10,000 हुआ तब कहेंगे।
अवस्थान तो गिरा और उसका तो उत्तम उत्तर रहा, तो बोलेंगे स्टेडी आज।
पर मैक्सिमम हानि होकर स्टेडी नहीं हुआ है। स्टेडी होने के लिए उसको यथार्थ इतनी हानि होती है, मैक्सिमम हानि होगी तो उसके अवस्थान नहीं होगा उस दूसरे समय में, ये कहना चाहते
हैं। थोड़ा बढ़ेगा
यानी मैक्सिमम हानि होने के पश्चात
उसको हानि हो जाएगी तो फिर थोड़ा बढ़ेगा, रिएक्शन आएगा।
यानी उतना का उतना नहीं रहेगा, ये बात कहना चाहते हैं। या हो सकता है कि दूसरे समय में फिर हानि होगी उसकी, स्टेडी नहीं रहेगा। उत्कृष्ट हानि होने के बाद स्टेडी नहीं रहेगा, बढ़ेगा कम होगा, यथा योग्य जो होगा।
मैंने तो
शेयर मार्केट याद आ गया।
अच्छा हुआ जब याद।
देखो 28 पेज पर पहला पैराग्राफ में फिर देखते हैं। देखो उत्कृष्ट बुद्धि का स्वामी कौन था? सेकंड लाइन, उत्कृष्ट अनुभव के सत्कर्म वाला जो जीव उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ, उसके बाद उसने उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा की, ऐसा जीव उत्कृष्ट बुद्धि का स्वामी है। यानी उसने यथायोग्य जो वृद्धि की, अनुत्कृष्ट से कहीं उत्कृष्ट हुआ। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है? तो उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला अन्यतर देव मरा, एकेंद्री हो गया, तदनंतर समय में उदीर्णा करने वाला मैक्सिमम हानि हो गई। उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी कौन है? उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोगिक जघन्य अनुभव की उदीर्णा करने लगा, वह तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। अब यहाँ हम क्या देख रहे थे? मोनि की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है, उससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है।
हाँ,
बाद में लिया उनको अवस्थान, और उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है। आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है, उससे उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों ही समान होकर विशेष अधिक है। यहाँ तो दोनों को समान लिया। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए।
यहाँ पे मनुष्य भी बताया, तो उसकी अपेक्षा जो अलग अलग बताया है, और ये मनुष्य यहाँ पे लिए, तो उसमें और इसका फर्क क्या होगा?
कहाँ पर
ओग में क्या बताया? वृद्धि से अवस्थान विशेष अधिक है, हानि विशेष अधिक है
ओग में बताया। हाँ।
और यहाँ पे नारकी, तिर्यंच और मनुष्य और सब देवों में यही लिया, तो डिफरेंस क्या हो गया?
यहाँ अवस्थान
ओग और
सेम
आदेश
बताया।
में अच्छा, वहाँ पे
हानि के बाद वाला अवस्थान होता
अच्छा,
है
अच्छा, वो एक केंद्रीय में जाने वाले जीव को
जघन्य का प्रकरण। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोनि की जघन्य हानि सबसे स्तोक है, उससे जघन्य वृद्धि अनंत गुणी है, उससे जघन्य अवस्थान अनंत गुणा है, अवस्थान के लिए भी अनंत गुणा है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, क्योंकि वो क्षपक श्रेणी में वो तो हानि होती है, और जघन्य वृद्धि भी तत्प्रायोग्य यानी विशुद्ध परिणाम वाले के जो वृद्धि होती है उसको जघन्य वृद्धि कहता है।
यहाँ पे
अदर प्रवृत्त संयत में लिया था। इसलिए मनुष्य में वही घटित होता है। आदेश से नारकियों में जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान तीनों ही समान है, क्योंकि वहां समय दृष्टि वृद्धि करता है, हानि करता है, अवस्थान करता है, उसको लिया। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब ये वृद्धि, उत्कृष्ट, हानि वगैरह तो देखी। अब जब कहीं पर कितनी प्रकार की वृद्धि होती है, कितने प्रकार की हानि होती है, स्थिति में कितने प्रकार देखे थे। चतुस्थान होते हैं हमें, यहाँ कितना होगा, अनंत वाला होगा
ना, होगा ना।
उसमें ये 13 अनुयोग द्वारा वृद्धि अनुभाग उदीर्णा का प्रकरण है। ये भी नया यहाँ से शुरू होता है, वृद्धि का प्रकरण। उसमें ये 13 अनुयोग द्वार है, समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक। समुत्कीर्तनानुगम वृद्धि का नंबर 1, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से कितनी कही,
6
वृद्धि, 6 हानि। अनुभाग में अनंत गुणा वाली बात बन सकती है, क्योंकि वो स्पर्धक भी अनंत होते, अविभाग प्रतिच्छेद भी अनंत अनंत होते, और स्थिति में कहीं भी असंख्यात से तो बढ़कर हो ही नहीं सकता। इसलिए स्थिति के प्रकरण में हमने असंख्यात्वाभाग, संख्यात्वाभाग, संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, ये 4 प्रकार देखे थे। यह तो षट्स्थान सब घटित हो गए। तो 6 वृद्धि, 6 हानि, अवस्थित और अवक्तव्य अनुभाग उदीर्णा है, बस है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, क्योंकि अवक्तव्य तो मनुष्यों में हो। तथा इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनमें अवक्तव्य अनुभाग उदीर्णा नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। बाकी वो 6 वृद्धि हानि अवस्थित तो सभी जगह पाए जाएंगे। स्वामित्वानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का, ओग और आदेश। ओग से 6 वृद्धि, 6 हानि और अवस्थान का स्वामी कौन है। अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव स्वामी है। जैसे स्थिति में हमने देखा समय दृष्टि अधिक स्थिति बांधेगा नहीं है उससे, परंतु यहाँ तो दोनों लिए ना, 6 वृद्धि और 6 हानि में लिया। हाँ,
और 6 वृद्धि ली,
समय दृष्टि को भी 6 वृद्धि ली, समय दृष्टि के लिए। विभक्ति की बात नहीं है, ना उसमें तो उदीर अनुदीरक हुआ था और फिर उदीरना शुरू हो गई,
इसलिए वक्त हो गया,
इसलिए।
लेकिन 11वें
में
तो
सत्ता में है, तो यहाँ उससे कुछ लेना देना नहीं। उदीरना किसको कहना, उदय में आने को कहेंगे, घटकर जहाँ किस रूप में उदय में आ रहा है, अपने मूल में से किस स्पर्धक में किस रूप में था और किस रूप से उदय में आ रहा है। तब तो दूसरा विषय शुरू होता है,
और इसका समझ में आएगा तो आप सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। हाँ, बाय द टाइम में ये
तो अन्यथा सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जी इसका स्वामी है। 6 वृद्धि, 6 हानि, अवस्थान। अवक्तव्य पद का भंग भुजगार के समान है, यानी कौन स्वामी है तो मनुष्य होगा, उपशम श्रेणी से उतरने वाला। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिरिंच और सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। पंचेंद्र तिरंज अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त तथा अनुदिष्ट से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में 6 वृद्धि, 6 हानि और अवस्थित पद का स्वामी कौन है, अन्यतर जीव है। यानी वहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते मिथ्या दृष्टि है कि समय दृष्टि, क्योंकि पर्याप्त में सारे मिथ्या दृष्टि है, वहाँ ऊपर तो सारी सम्य दृष्टि है। इसी प्रकार अनारक मार्गना तक जाना चाहिए। अब कालानुगम, कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, ओघ और आदेश। ओघ से पांच वृद्धि और पांच हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
ये हानि तो समझ में आया, अनंत गुण वृद्धि को जो नीचे उतरने वाले जीव को होगी
लगातार वृद्धि रूप से उसका बंद होगा, बंद होगा या उदीर्ण होगी, बंद भी नहीं कहना।
हाँ, उदीर्ण होने की अपेक्षा जो एक ही समय बढ़कर जो उदीर्ण,
हर समय उसकी
अनंत
गुण वृद्धि रूप होगी। और अन्य पांच वृद्धि के लिए आवली का संख्या तो अनंत गुण वृद्धि हानि के लिए एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक। अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। हमने देखा था ना, अवस्थित पद तो रेयरली होता है ना, उसका अंतर भी देखा था हमने, याद है क्या? असंख्यात लोग देखा था। अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इसी प्रकार सब नारकी सब तीर्यंच मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनमें अवक्तव्य पद नहीं है।
तो यहाँ पे भी अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि होगी, पर वो भी अंतर्मुख तक हो सकती है।
हाँ, इसी प्रकार अनारक मार्गना तक जानना चाहिए। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, ये वृद्धि का अनुयोग। अभी हमने नंबर डाला था, स्वामी तो दो नंबर का था,
तीन हो गया ना,
काल तीन नंबर का था और अंतर चार नंबर का। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदिश। ओघ से पांच वृद्धि पांच हानि और अवस्थित पद का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल, हाँ अभी याद किया था ना, असंख्यात लोक प्रमाण। अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त। हमने ये भी देखा था भुजगार अल्पतर में, दोनों का अंतर अंतर्मुहूर्त ही है, यानी बारंबार वो और उसकी कौन सी वाली है, अन्य पांच की नहीं लिया। अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण हानि का जो मिनिमम अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अवक्तव्य पद का भंग भुजगार के समान है, यानी अवक्तव्य का अंतर कितना होगा, कम से कम एक अंतर्मूर्त और अधिक से अधिक
अर्धपुष्ट।
इसी प्रकार तीर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। तीर्यंचों में इसलिए कहा कि असंख्यात लोक प्रमाण उसमें बन सकता है, अन्य पर्याय में नहीं होगा। मिनिमम एक समय लिया। आदेश से नारकियों में पांच वृद्धि पांच हानि और अवस्थित पद का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर प्रमाण। अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का भंग ओघ के समान है, यानी एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक।
यानी वो सभी के होती है ना, यानी समय दृष्टि के भी होती है, ये बात पढ़ी हमने। इसी प्रकार सब नारकियों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति करनी चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में पांच वृद्धि पांच हानि और अवस्थित पद का जघन्य अंतरकाल एक समय, उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। अनंत गुण वृद्धि और अंत गुणहानि का भंग ओहू के समान, वे एक समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, पहले हमने पढ़ा था कि वो उत्कृष्ट बंद करेगा या उत्कृष्ट करेगा अंतर मुहूर्त में, तो निश्चित रूप से वो अनंत गुणहानि हो जाएगी, इसलिए दो समय तक ही उसी में उदीर्ण में रखा उसे। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद का भंग भुजगार के समान है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित पद का जघन्य अंतरकाल एक समय, उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर मुहूर्त है। यानी उसमें रहने का काल जो है शुरू में और अंत में, देवों में नारकियों के समान भंग है। इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। ये अन्य पांच के लिए पांच वृद्धि हानि के लिए कुछ कम अपनी अपनी स्थिति,
और अनंत गुणा वृद्धि और हानि के लिए
वो तो अंतर्मुहूर्त सब जगह
है ना, वो उसका पद काल के ये अंत बहुत छोटा होगा
ऐसा वो अल्प बहुत उन्हें देखेंगे शायद जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए, ठीक करना री हो गया। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम वृद्धि के प्रकरण पांच नंबर है क्या, वृद्धि अनुयोग नंबर पांच। तो नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषयानुगम का अवलंबन लेकर निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित अनुभाग के उद्दीरक जीव नियम से है, ये ध्रुव भंग हुआ। कदाचित ये नाना जीव है और एक अवक्तव्य अनुभाग का उद्दीरक जीव है, कदाचित ये नाना जीव है और नाना अवक्तव्य अनुभाग के उद्दीरक जीव, क्योंकि वो तो अवक्तव्य उत्सम श्रेणी उतरते समय। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें अवक्तव्य अनुभाग के उद्दीरक जीव नहीं है। आदेश से नारकियों में अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि के अनुभाग के उद्दीरक जीव नियम से है, शेष पद भजनीय है। इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच मनुष्य त्रिक और सब देवों में जानना चाहिए, मनुष्य अपर्याप्तकों में सब पद भजनीय है सांतर मार्ग। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए।
नारकियों में
देखो नारकियों में कौन से अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण हानि ली, हाँ तो पांच वृद्धि पांच हानि और अवस्थित वाला लेना ग्यारह। हाँ भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, ये वृद्धि का छठा नंबर, ओघ और आदेश। ओघ से अनंत गुण वृद्धि अनुभाग के उद्गीरक जीव साधिक द्वितीय भाग प्रमाण है। अनंत गुणहानि अनुभाग के उद्गीरक जीव कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण है।
इन दोनों तो नियम से होगी होगी। अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव अनंतवे भाग प्रमाण और शेष पद संबंधी अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण है। शेष पद ने अन्य वृद्धि हानि और अवस्थित। उत्कृष्ट वृद्धि नहीं कहा, अनंत गुण वृद्धि समय दृष्टि के भी है। वो उत्कृष्ट अनुभव उदीरणा की बात आप जो सोच रहे हैं संकलेश वाले, यहाँ तो वृद्धि की बात है। देखो अनंतानंत स्पर्धक है तो थोड़ा बढ़ेगा फिर भी उसको हम अनंत गुणा वृद्धि वाले कहेंगे वापस।
अनंत गुणा वृद्धि की बात
हाँ, तो नीचे के स्पर्धक में से ऊपर के स्पर्धक वाला हो गया तो क्या कहेंगे?
हाँ,
अनंत गुणा हो जाएगी ना। इमीडिएट दो स्पर्धक नहीं लेना है, ऊपर से किसी स्पर्धक में से उसकी उदय ना हुई, पहले तो नीचे के स्पर्धक में से होगी, यानी किस रूप से उदय हो रहा था उसकी बात। वो उत्कृष्ट के लिए
अनंत गुणा वृद्धि में
सत्ता के लिए यहाँ उदीर्णा में अन्य उसके निमित्त बनते। देखो स्थिति में तो जो है उसकी तो लगातार अगर अधिक नहीं बंधेगा तो लगातार स्थिति कम होती चली जाती, और यहाँ तो सत्ता की अपेक्षा उसका नहीं, उदय किस रूप में हो रहा है उसकी बात। अब जिसकी सत्ता में है उसके संतोष हो गए तो उसकी तो हो ही होगी। इसी प्रकार यानी मैक्सिमम कितने हैं तो अनंत गुण वृद्धि वाले शादी द्वितीय, अनंत गुणहानि वाले
कुछ
कम द्वितीय भाग प्रमाण, और बाकी जो है
अवक्तव्य
वाले तो संख्यात है यानी अनंत विभाग प्रमाण होंगे, और अन्य जो है असंख्यात विभाग। इसी प्रकार सब नारकी सब तीर्यंच मनुष्य पर्याप्त और सामान्य देवों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है संख्यात्वे भाग प्रमाण, क्योंकि मनुष्यों में पूछा था। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें असंख्यात्वे भाग के स्थान में संख्यात्वा भाग करना चाहिए, क्योंकि ये जीव ही संख्या था। इसी प्रकार सर्वासिद्धि में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। तो कितने भाग प्रमाण है तो बता दिया, और उसका प्रमाण बताएंगे। वृद्धि का नंबर 7 है। परिमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं अनंत है। अनंत में हमने क्या देखा था, अनंत गुण वृद्धि वाले साधिक द्वितीय भाग थे, अनंत गुण हानि वाले कुछ कम द्वितीय भाग थे, अवक्तव्य वाले अनंत विभाग थे, और बाकी तो असंख्यात विभाग। तो असंख्यात विभाग भी अनंत है। मात्र अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव कितने तो संख्या,
ये असंख्यात विभाग जो अनंत है तो भी उसमें अंतर हो सकता है। वो जो पांच वृद्धि और पांच हानि में भी अंतर होगा तो इतना लंबा अंतर हो सकता है कि वो भी जीव अनंत है।
अभी आप अन्य जीव अन्य जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, पहले हमने अंतर जो देखा था तो एक जीव की अपेक्षा है ना। यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा अंतर कहेंगे।
हाँ।
काल अंतर अभी आएगा।
हाँ, अंतर बाकी है। हाँ।
जो अनंत में होता है उसका अंतर नहीं होगा। इसी प्रकार तीलियंचों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। आदेश से सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिलियंच, मनुष्य पर्याप्त और सामान्य देवों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में सब पद संबंधी अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं तो असंख्यात है, क्योंकि इन मार्गणा में असंख्यात जीव हैं। इसी प्रकार सामान्य मनुष्यों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, इनमें अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं तो संख्यात है, क्योंकि वो करने वाले पर्याप्त ही ना, वो तो श्रेणी से उतरने वाले मनुष्य पर्याप्त मनुष्य ने और सर्वार सिद्धि के देवों में सब पद संबंधी अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं संख्या है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब रुकेंगे यहाँ के, चलना है
क्षेत्र,
क्षेत्र पढ़ना है। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, ओग और आदेश। ओग से छह वृद्धि, छह आने और अवस्थित अनुभाग के उदीरकों का कितना क्षेत्र है, अभी तो देखा अनंत जीव कर रहे हैं तो सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है। अवक्तव्य अनुभाग के उदीरकों का क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। शेष गतियों में सब पद संबंधी अनुभाग के उदीरकों का क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब यहीं रुकेंगे क्योंकि आगे वाला बड़ा है थोड़ा। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देतमो।
नमो ओरियंतारं नमो सदानं नमो अरुणं।